Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on the economic, business and stock market news of the day. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our direct numbers, 2331-4444, 2342-1050. Our numbers, once again, are 2331-4444 and 2342-1050. Please dial 011 as the STD code before these numbers. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है. हम लेकर के आए हैं आपके लिए शेयर बाजार से जुड़ी खबरें और व्यापार जगत की हलचलों के बारे में जानकारी. आज सोमवार है और आप अपनी आर्थिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं. हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे. आप हमें 2331-4444 और 2342-10050 पर कॉल कर सकते हैं. श्रोताओं आपके प्रश्नों का उत्तर देने और आर्थिक खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव रंजन जी. राजीव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
जी धन्यवाद.
और सबसे पहले हेडलाइंस. घरेलू शेयर बाजार 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद. सेंसेक्स में 940 अंक का ऊंचा और निफ्टी 22,600 अंक से ऊपर पहुंचा. वायदा कारोबार में मांग बढ़ने से सोने की चमक बढ़ी. चांदी ने 82,600 के स्तर को पार किया और हमास युद्ध विराम वार्ता के बीच तेल की कीमतें स्थिर.
Benchmark indices end 1% higher. Sensex settles at 940 points. Nifty above 22,600 level. Gold shines today over surge demand in futures trade. Silver rate also rises to cross 82,600 rupees. And oil prices steady amid Hamas ceasefire talks.
और सेंसेक्स पर नजर डालें तो सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बैंकिंग और बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों के शेयरों में आज हुई खरीदारी के कारण घरेलू शेयर बाजार 1% से ज्यादा बढ़त के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 941 अंक यानी कि 1.28% के उछाल के साथ 74,671 अंक पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 223 अंक यानी करीब करीब 1% की बढ़त के साथ 22,643 अंक पर पहुंच गया. विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएससी मेट कैप सूचकांक आज 0.79% ऊपर चढ़ गया और स्मॉल कैप सूचकांक 0.07% के लाभ के साथ बंद हुआ.
बेंचमार्क इंडस्ट्रीज रिटर्न टू द विनिंग वेज आफ्टर अ वन डे हायटस लेड बाय स्ट्रांग बाइंग एक्शन इन बैंक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स अमिड पॉजिटिव ग्लोबल सेंटीमेंट्स. द बीएससी सेंसेक्स सोर्ड 941 पॉइंट्स 1.28% टू सेटल एट 74,671 पॉइंट्स वाइल Nifty rose 223 points, 1% to close at 22,643. From the Sensex pack, ICICI Bank climbed nearly 5% after quarterly results. IndusInd Bank, UltraTech Cement, State Bank of India and Axis Bank were the other major gainers. On the other hand, HCL Technologies tanked nearly 6% after the company reported a flat year-on-year growth in net profits in the March quarter at 3,986 crore rupees. ITC, Wipro and Bajaj Financial Services were the other laggards. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index jumped 0.79% while small-cap gained by 0.07%. In sectoral indices at the BSE, Bankex gained 2.7%, financial services gained 1.8% and utilities rose 1.1%. In contrast, realty fell 1% and services slipped 0.8%.
और इस बीच हमारे साथ में रायगढ़ से कुश जुड़ चुके हैं जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं. कुश जी, आपका सवाल पूछिए.
जी नमस्कार सर. राजीव रंजन सर को मेरा नमस्कार.
जी नमस्कार
सर. मेरा सवाल ये है कि रेपो रेट रिजर्व रेपो रेट जो होता है, रिजर्व रेपो रेट कम होने के बाद भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन क्यों देती है? और मेरा दूसरा सवाल है कि कृपया विस्तार से बताएं कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के बारे में.
जी देखिए, जो पहला सवाल है आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में, तो वहां पर आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि बैंकों को कई बार शॉर्ट टर्म कैपिटल की जरूरत पड़ती है, बहुत जैसे ओवरनाइट फंड्स की जरूरत पड़ती है, और सिर्फ उतने पार्ट के लिए वो रिजर्व बैंक पर निर्भर करते हैं। तो जब भी वो रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा ब्याज पे पैसा लेते हैं, जब वो रिजर्व बैंक के पास पैसा जमा करते हैं तो रिजर्व बैंक उन्हें थोड़ा कम ब्याज देता है। तो यही जो एक अंतर होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में, उसका कारण यही है कि जब आप आरबीआई के पास पैसा रखते हैं एक बैंक के रूप में तो वो आपको थोड़ा कम ब्याज देता है। और जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो उसके लिए अभी बजट का हम इंतजार कर लेते हैं, उस समय इस पर विस्तार से बात करेंगे।
नेक्स्ट कॉलर जितेंद्र फ्रॉम जयपुर। जितेंद्र, वार्म वेलकम टू यू, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए।
हाँ तो थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा सर, ये क्या नाम है, आईटी कंपनी के अभी जो रिपोर्ट आई है, मतलब तिमाही का रिजल्ट तो है, तो सभी प्रॉफिट कम दिखा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है कि बहुत कंपनी आ गई है उसके अंदर, या और भी कोई रीजन है?
देखिए, मुख्य कारण ये है कि इन कंपनियों की सेवाएं आमतौर पर जो अमेरिकी बाजार है या यूरोपीय बाजार है या दूसरे तमाम अन्य विदेशी बाजार हैं, मुख्य रूप से इनका धंधा वहां से आता है, और अभी उन सारी अर्थव्यवस्थाओं में थोड़ा बहुत मांग की स्थिति कमजोर है, डिमांड की स्थिति कमजोर है। यानी जो इन कंपनियों के ग्राहक हैं, मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, मान लीजिए इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब हमारे देश की बड़ी आईटी कंपनियां हैं, ये जिन दूसरी कंपनियों को सेवाएं देती हैं, दूसरे देशों की कंपनियों को सेवाएं देती हैं, उनके सामने अपने लिए इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, आर्थिक अनिश्चितताएं हैं, इसके चलते वो अपने ऑर्डर्स में थोड़ी देरी कर रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स उन्हें चलाने हैं उसमें थोड़ी सी वो देरी कर रही हैं। तो इस वजह से अभी हमारे देश की आईटी कंपनियों को भी बहुत साफ साफ नहीं पता है कि भाई साल भर के बीच में उन्हें कितने ऑर्डर मिलेंगे। इन सब चीजों को लेकर के जो अनिश्चितता है वही हमें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट करती हुई दिख रही हैं, और साथ में मार्केट भी इसी वजह से इस सेक्टर को लेकर के अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है।
राजीव जी, अभी की अगर आज की हम शेयर बाजार पर नजर डालें तो लगभग पांच दिन हमने बढ़त का रुख देखा, फिर एक दिन गिरावट देखी, अच्छी खासी गिरावट उसमें देख रही है अगर अंकों के मामले में बात करते हैं तो, और आज भी अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं, ये किस तरह का रुख आपको नजर आ रहा है शेयर बाजार का?
देखिए, पिछले हफ्ते हमने देखा मोटे तौर पे मार्केट्स अगर सेंसेक्स निफ्टी के संदर्भ में देखें तो रेंज बाउंड था, हल्की बढ़त थी, उसमें शुक्रवार को जरूर आपने जैसा कहा कि हमें एक झटका देखने को मिला, लेकिन दूसरी तरफ पिछले हफ्ते में ब्रॉडर इंडिसेज में अच्छी खासी तेजी थी, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी चाल बनी थी। आज हमने देखा कि अब निफ्टी ने भी अच्छी चाल पकड़ी है, उसके कंपेरिजन में मिड कैप स्मॉल कैप ठीक है चले हैं, लेकिन थोड़ा हल्के चले हैं। तो ये मतलब बारी बारी से हो रहा है कि अच्छा ये हफ्ता हमारा था, ये हफ्ता तुम्हारा है, ये इस तरह से अभी जो हमारे जो मेजर इंडिसेज हैं और जो ब्रॉडर इंडिसेज हैं वो बिहेव कर रहे हैं। मोटे तौर पे बाजार आश्वस्त है कुछ चीजों को लेकर के, और उसमें सबसे जो मुख्य इसके सामने चीजें हैं वो है, पहली चीज पॉलिसी कंटिन्यूटी, जो बाजार के सामने सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी बनी रहेगी आगे भी अगले कुछ वर्षों तक, ये बाजार देख रहा है। और दूसरी चीज जो बाजार देख रहा है कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं कोई ऐसी चिंता नहीं है, जो अनिश्चितताएं हैं हमारे सामने वो ग्लोबल फ्रंट से हैं, लेकिन उनको भी लेकर के जैसा अभी आपने अपने हेडलाइंस में जिक्र किया कि जो तनाव अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर दिख रहा था वो कुछ कम हो सकता है, तो वो भी एक कारण आज हमें दिखा बाजार में।
और इस बीच मुंबई से गोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गोपाल जी, आपका सवाल क्या है?
जी नमस्कार जी, मार्केट में मेरे दो सवाल हैं, ये बहुत कॉमन कंपल्सरी सवाल है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला सवाल, ये जो आईटी कंपनी ने साफ गाइडेंस दे दिया है, गाइडेंस वीक दे दिया है, और अगले क्वार्टर में तो इन्होंने साफ दे दिया है कि हम लोग लॉस में दिखा, लॉस भी दिखा सकते हैं, तो ये तो इसका मतलब ये तो समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आगे तो मार्केट को खस्ता हालत होने वाली है, तो ये गाइडेंस अगर कम दिखा रहे आने वाले क्वार्टर में क्लियर बोल दिया उन लोग ने। दूसरा सवाल ये है, पिछले चार महीने से मैं देख रहा हूँ सर, ये बीएसई 20,000 पॉइंट, एनएसई 5,000 पॉइंट, कॉल के 20,000 पॉइंट, सर ये पिछले पांच साल में भी इतना नहीं बढ़ते, चार महीने में क्यों बढ़ गए इतना, क्या रीजन क्या है?
जी देखिए, पहली बात जहां तक आईटी क्षेत्र की है तो उसके बारे में अभी पिछले श्रोता ने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में मैंने आपको समझाया था कि आईटी क्षेत्र को लेकर के अनिश्चितता क्यों है, वो जो अनसर्टेनिटीज हैं वही हमें इनके गाइडेंस में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। अगर इन कंपनीज को ये लगता है कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि इनको एक सीधा सीधा इंडिकेशन अपने क्लाइंट से मिलता है कि भाई वो साल भर में कितना काम करना चाहते हैं, अगर वहां पर उन्हें कोई अनिश्चितता दिखती है, अगर उनके अपने क्लाइंट कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं कि वो साल भर में क्या काम कराना चाहते हैं उनसे, तो वैसे में ये कंपनियां एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी की तरह से एक अपने इन्वेस्टर्स को पहले से थोड़ा अलर्ट कर देती हैं और इसीलिए आपके सामने उनकी तरफ से गाइडेंस आते हैं। अगर उन्हें एक अनसर्टेनिटी दिख रही है तो वो अनसर्टेनिटी उन्होंने आपके सामने रखी है। अब जिस समय स्थितियां बदलेंगी तो वो वापस अपने गाइडेंस में सुधार करेंगी। एक बात आप समझ करके चलिए कि दुनिया में आईटी के बिना कामकाज नहीं चलने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी तरह से इस सेक्टर में निराशा का माहौल रहेगा। चीजें बदलेंगी, लेकिन इस निराशा के माहौल में बावजूद इस बात के कि आईटी सेक्टर को लेकर के बाजार जो है अभी बहुत उत्साहित नहीं है, इसके बाद भी अगर आप वैल्यूएशन फ्रंट पे देखें तो आईटी कंपनियां जो हैं कोई बहुत सस्ती आज भी नहीं है। और उसका कारण यही है, सबको पता है कि आईटी के बिना काम नहीं चलना है, तो कोई बेच करके भाग नहीं रहा है उन्हें। इसीलिए आज भी इतने निराशा के माहौल में भी वैल्यूएशन के फ्रंट पे वो बहुत सस्ती नहीं हुई है। तो अगर आपको कहीं इस सेक्टर में पैसा लगाना है तो इस बात को ध्यान में रख करके सोच समझ करके लगाएं।
Rajiv, the Nifty IT index actually went up by 223 points today, so the valuations are on the higher side. Would you say the biggest advantage for owning an IT company is that the B2B business, and secondly their earnings are in US dollars, and the strong US dollar in the index itself, which is right now between 105 and 107, has always been advantageous for any company earning in US dollars. So the next question is that how do you see the currency market vis-a-vis the dollar?
देखिए, जहां तक करेंसी का संबंध है तो ऑफकोर्स अगर डॉलर में बुयंसी है तो उसका एक फायदा हमें मिलेगा, लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स ऊपर से काफी नीचे भी आया था, बीच में 105-106 के लेवल पे गया था, उससे आगे भी जाने का एक खतरा दिख रहा था, लेकिन उसके बाद वापस नीचे आया, अभी वापस रिबाउंड कर रहा था जब हमने इकोनॉमिक फ्रंट मोस्टली जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे हमने अनसर्टेनिटीज देखी थी, तो उसके बाद फिर डॉलर इंडेक्स वापस चला। डॉलर के मजबूत होने से आईटी कंपनियों को फायदा होता है, लेकिन वो अपने आप में इतना नहीं होगा कि अगर डिमांड ही स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, अगर आपका टोटल टर्नओवर ही कम होने वाला है तो उसमें अगर आपको करेंसी का थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल भी गया तो वो बहुत मिनिस्क्यूल होगा, उससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ जो है उसको कोई बहुत बड़ा बूस्ट नहीं मिल जाएगा, पहली चीज ये है। दूसरा ये है कि आजकल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन काफी है। फॉर एग्जांपल, काफी कंपनियां जो है उनका बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यूरोप से भी आता है, और यूरोप की हालत पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि वहां पर मंदी के अंदेशे, वहां पर रिसेशन का एक खतरा लगातार बना हुआ रहा है। तो इसलिए हमारी कंपनियां सिर्फ यूएस डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ डॉलर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर कोई कंपनी सिर्फ डॉलर डिपेंडेंट ज्यादा है, मतलब अगर उसकी रेवेन्यू का ज्यादा पार्ट यूएस से आ रहा है, तो वहां पे शायद ये करेंसी का पार्ट थोड़ा सा बहुत प्ले होगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां नहीं होंगी जो सिर्फ और सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट हो।
तो अभी क्या डोमेस्टिक कंपनीज भी जो है दे यूजिंग आईटी सर्विसेज, इज इट ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स दैट दे आर सर्विसिंग अपार्ट फ्रॉम जो एक्सपोर्ट क्लाइंट्स हैं उनके?
जी, आप कई सारी बड़ी कंपनियों को देखेंगे तो उनका इंडिया रेवेन्यू भी आज अच्छा खासा हो चुका है। इंडिया इटसेल्फ हैज बिकम ए प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। और उसके अलावा यूएस, यूरोप, ये सब चीजें या ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन जितना उन्होंने किया है, जानबूझ करके किया है, तो आज की तारीख में अगर सिर्फ डॉलर के कंपैरिजन में रुपए में अगर आपको थोड़ी वीकनेस दिखेगी भी तो ठीक है, वहां पे थोड़ा सा बहुत प्ले आउट होगा, लेकिन डॉलर वर्सेज रुपये का चार्ट अगर आप देखें तो पिछले साल डेढ़ साल से ये 83 के आसपास ही घूम रहा है। तो वहां भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको डॉलर के कंपैरिजन में रुपी के डिप्रिसिएशन का बहुत बड़ा कोई बेनिफिट मिला है।
राजीव, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे श्रोता ने जो ये बात रखी कि बहुत कम समय में हमने एक लंबा अंतर तय कर लिया है, हजारों की संख्या को सेंसेक्स हमने क्रॉस कर लिया है, इसमें अगर पीछे हम इसके देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर की मजबूती हमें अच्छी खासी नजर आती है, तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा जरूर है कि बैंकिंग सेक्टर सेफ रहेगा या आईटी सेक्टर सेफ रहेगा, किसी और सेक्टर में हमें जाना चाहिए?
देखिए, हर सेक्टर अपनी अपनी एक साइक्लिकलिटी के साथ आएगा। जैसे अभी आईटी सेक्टर के लिए उसका साइकिल अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर चूंकि डोमेस्टिक प्ले ज्यादा है तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी मजबूत है, वहां पर एक स्ट्रांग होल्ड हमें दिख रहा है। आप इस समय जितने बैंकों के रिजल्ट्स आए हैं आप उन सबको देखिए, उनमें अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, आपको कहीं भी कोई चिंता नहीं है, उनके एसेट क्वालिटी में कोई चिंता नहीं दिख रही है इस समय, उनकी बैलेंस शीट आज की तारीख में काफी क्लीन दिख रही है। ये सब कुछ देखते हुए अगर आप बैंकिंग सेक्टर को इस समय इग्नोर करेंगे तो अच्छा नहीं है, आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। लेकिन किसी एक सेक्टर में ही अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर लेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ समय के बाद साइकिल पलटेगा, किसी न किसी वजह से उस सेक्टर में नई चिंताएं आएंगी, तो आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में एक बैलेंस बना करके चलना पड़ता है।
अ बैलेंस फंड एज ए से इन म्यूचुअल फंड। राजीव जी, टेल अस अबाउट दी हाउ द मार्केट विल परफॉर्म नेक्स्ट वीक। टुडे इट्स फ्राइडे, 940 पॉइंट्स मार्केट वेंट अप। वी सॉ एफआईआईज डीआईआईज बोथ बीइंग नेट बायर्स बट नॉट बाय अ ग्रेट मार्जिन। सो हु आर द रियल बायर्स इन द मार्केट दैट पुश द सेंसेक्स अप एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन मंडे?
मंडे को क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, एक हफ्ते में क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, फ्रैंकली आई डोंट नो। एंड इफ एनीबडी टेल्स यू दैट ही नोज देन ईदर ही मस्ट बी लाइंग। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि मुझे नहीं मालूम, और जितना मुझे समझ में आता है किसी को नहीं मालूम कि अगले दिन या अगले एक हफ्ते में बाजार क्या करने वाला है, तो उस आधार पर हमें निवेश नहीं करना चाहिए। इवन ट्रेडर्स जिनका काफी कुछ बिजनेस इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई अगले दिन या अगले एक हफ्ते में बाजार कैसा चलेगा, वो भी कुछ पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो सर्टन नहीं हो सकते कि बाजार अगले दिन ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा या कितने पॉइंट्स ऊपर जाएगा कितने पॉइंट्स नीचे जाएगा।
जस्ट एज अ मैटर ऑफ करेक्शन, ऑन फ्राइडे द मार्केट्स एक्चुअली फेल एंड टुडे ऑन मंडे द मार्केट्स हैव वंस अगेन गॉन अप, इट हैज कवर्ड। सो द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक? इट सीम्स द सेंटिमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रांग।
सेंटिमेंट मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, और यहां तक सेंटिमेंट का सवाल है। इस समय जैसा मैंने अपने इनिशियल कमेंट्स में भी कहा था कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली जो बात है हमारे इन्वेस्टर्स को वो ये है कि हमारी अपनी इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे है। हमारी जो इस समय एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का माहौल है जिसके चलते लोगों को लगता है, और सिर्फ हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को नहीं बल्कि सारी दुनिया को लगता है कि ठीक है, इंडिया एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और वहां पर एक पॉलिसी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अभी नोमिरा की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें भी इसी पॉइंट को सामने रखा गया कि हमें 2030 तक इंडिया की इकॉनमी एक अच्छे पेस के साथ बढ़ती हुई दिख रही है, और उसके पीछे एक बड़ा कारण यही होगा कि एक पॉलिसी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जब तक इस बात को लेकर के कोई सवाल नहीं है तब तक बाजार को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
तो निफ्टी बैंक हैज गॉन अप सब्सटेंशियली, पीएसयू बैंक्स स्पेशली, एंड आपने कहा जी कि क्वार्टरली परफॉर्मेंसेज हैव बीन वेरी गुड, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई द नेट प्रॉफिट्स ऑफ दीज बैंक्स। व्हाट अबाउट द प्राइवेटाइजेशन पोस्ट इलेक्शंस? डू यू थिंक दैट इज अनदर रीजन व्हाई यू हैव ट्रेडर्स हु आर नाउ पिकिंग अप पोजिशंस?
प्राइवेटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ पीएसयू बैंक्स?
यस,
बैंकिंग सेक्टर में सरकार ने कंसोलिडेशन का काम पहले ही कर लिया है, तो अभी इमीडिएट कोई एजेंडा होगा सरकार का बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू बैंक्स के कंसोलिडेशन का या प्राइवेटाइजेशन का, ऐसा मतलब मेरी गट फील तो नहीं कहती, मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ उस बारे में नहीं है। लेकिन जो बाकी पीएसयू कंपनीज हैं, अगर आज की तारीख में जो स्थिति दिख रही है, अगर उस हिसाब से एक हमें पॉलिटिकल कंटिन्यूटी दिखती है, तो हो सकता है कि डिसइन्वेस्टमेंट का एजेंडा वापस रडार पे आ जाए।
राजीव, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपने इंडियन इकोनॉमी का जिक्र किया कि एक मजबूत प्लेस पर हम देखते हैं 2030 तक। सारी रिपोर्ट्स इसी तरह की आती हैं कि भारतीय इकोनॉमी मजबूत स्थिति में है और आगे भी बढ़ रही है, लेकिन एक निवेशक की नजर से अगर देखें तो जब भी कहीं भी कोई करेक्शन आता है किसी भी शेयर बाजार में आउट ऑफ इंडिया या भी कोई भी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम आता है, तो उसके दिमाग में ये चीज जरूर आती है कि इसका असर अगर मार्केट पड़ा तो क्या होगा।
जी, एक्चुअली अगर आप पिछले काफी समय से देखें, साल डेढ़ साल से अगर आप देखें, मार्केट में जब भी कोई करेक्शन आया है तो बहुत ही शैलो रहा है
जी,
बहुत ही कम मात्रा का हमें असर देखने को मिला है उस गिरावट के बीच में अपने इंडिसेज पे, और उसका कारण यही है कि गिरावट में खरीदने के लिए लोग बैठे हुए हैं
जी।
मतलब अगर आप किसी से चुटकुले में कहें कि भाई यहां सेंसेक्स इतने पॉइंट नीचे आने वाला है, तो वो तुरंत कहेगा अच्छा वहां पे किस लेवल पे हम वापस खरीदना शुरू कर दें। तो सबके मन में यही बात बैठी हुई है कि अच्छा थोड़ा सा नीचे आए तो खरीदेंगे, तो जब नीचे खरीदने के लिए लोग बैठे रहेंगे तो बहुत ज्यादा गिरावट आ भी नहीं सकती है।
राइट,
ये एक नेचुरल फिनोमेना है
जी। व्हाट अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स इन द मार्केट? बाइंग ऑन डिप्स इज समथिंग दैट एक्सपर्ट्स लाइक योरसेल्फ ऑलवेज टेल आर लिसनर्स, बट दे ऑल्सो हेविली इन्वेस्टेड इन द ऑप्शंस मार्केट एंड नॉट सो मच इन द कैश मार्केट। हाउ डू यू सी द ऑप्शंस मार्केट रियली डिक्टेटिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द कैश मार्केट?
देखिए, ऑप्शंस मार्केट में इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, वहां पे जो भी होते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं।
स्पेकुलेशन,
वो एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है और वो ट्रेडर्स का काम है, और वो मार्केट के इकोसिस्टम का एक नेसेसरी पार्ट है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप उसे इन्वेस्टर नहीं कह सकते। और जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना शेयर लेकर के बैठे रहते हैं छह महीने, साल भर, दो साल, पांच साल, दस साल, जो इस टाइम होराइजन के साथ शेयर लेकर के अपने पोर्टफोलियो में, अपने डीमैट अकाउंट में लेकर के बैठे रहते हैं, हम उनको ही इन्वेस्टर कह सकते हैं। ऑप्शंस एक अलग एक्टिविटी है, वहां पर प्योर स्पेक्यूलेटिव चीजें चल रही हैं। क्या उसका कैश मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है? होता है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। कभी डिमांड सप्लाई की तरह से जिस तरह से हमें प्राइसेस पे एक इम्पैक्ट दिखता है वो कभी कभी होगा, लेकिन अल्टीमेटली हम कहते हैं बाजार में कि स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। तो कंपनियां जितना कमाएंगी, यानी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखते हैं उनमें उनकी जो अर्निंग्स आएगी, उनकी जो प्रॉफिट्स आएंगे, उसमें जैसी ग्रोथ दिखेगी, अल्टीमेटली शेयर प्राइसेज को वही ड्राइव कर सकती हैं। ऑप्शंस का मार्केट या फ्यूचर्स का मार्केट वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ड्राइविंग फोर्स हमेशा अर्निंग्स होगी।
और अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रूपया 83.47 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 105.66 पर कारोबार कर रहा था। वहीं एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख देखा गया। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.16% की तेजी आई। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.80% का उछाल आया। हांगकांग शेयर बाजार के हिंगसेंग इंडेक्स में 0.54% का लाभ दर्ज हुआ और सिंगापुर के स्टेट्स टाइम इंडेक्स में 0.06% की बढ़त देखी गई। जापान का निक्केई सूचकांक आज बंद था। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में मिलाजुला रुख देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.56% ऊपर था। फ्रांस का कैक 0.37% लाभ में था और जर्मनी का डेक्स मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। राजीव जी, क्या कहेंगे इन मार्केट्स के बारे में आप?
देखिए, जब ग्लोबल मार्केट्स अच्छे रहते हैं तो हमारा बाजार अच्छा रहता है, और जब ग्लोबल मार्केट्स अच्छे नहीं रहते हैं तो भी हमारा बाजार कुल मिलाकर के थोड़ा ठीक ही रहता है। ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स में अगर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो तो उसका एक असर हमारे यहां भी होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी रिसेंट मंथ्स में, क्वार्टर्स में हमने जब भी कोई अपने यहां गिरावट देखी है तो वो बहुत शैलो रही है, और उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें अपनी जमीन पे, अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स पे ज्यादा भरोसा है।
वी सी द चाइनीज स्टॉक मार्केट पिकिंग अप। व्हाट्स योर टेक ऑन चाइनाज इकोनॉमी राइट नाउ?
इसका तो उन्हें खुद शायद पता नहीं होगा, या दूसरे तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ उनको पता होगा, बाकी दुनिया में किसी को नहीं पता है। तो उनकी इकोनॉमी को लेकर के स्पेकुलेशन बहुत रहता है हमेशा, और साथ में उतने ही डाउट्स भी रहते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उसमें वो कितना सच बता रहे हैं, कितना छिपा रहे हैं। तो चाइनीज इकोनॉमी को लेकर के हर आदमी शक में रहता है। रिसेंटली उनके डेटा अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके साथ साथ उनका अपना जो मार्केट है वो काफी नीचे हो गया था, काफी कमजोर हो गया था, तो उसके चलते जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, जो इंटरनेशनल ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, उनमें से एक व्यू बना कि हाँ, वो चाइनीज मार्केट बहुत सस्ता हो गया है तो वहां कुछ पैसा लगाना चाहिए, और उसके चलते यहां भी एक डिबेट बनी कि अच्छा ठीक है, हमारा मार्केट अगर वैल्यूएशन में सस्ता नहीं है और वहां पे बहुत सस्ता मार्केट है तो क्या पैसा डाइवर्ट हो जाएगा? तो वो एक डिबेट ही रही, एक्चुअली हमें वैसा होता हुआ दिखा नहीं। ठीक है, कुछ लोग चाइना में पैसा ले जाएंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत में बेच करके वहां पैसा लगाएंगे। उनके पास जो अपना इन्वेस्टेबल सरप्लस होगा उसमें से वो कुछ एलोकेशन चाइना को करेंगे, अगर उन्हें दिखता है कि चाइनीज मार्केट सस्ता है, और आगे वहां हो सकता है कि अगर बहुत सस्ता है, थोड़ा सा बढ़ गया तो अच्छी बात है, लेकिन उसके चलते क्या इंडियन मार्केट्स में एलोकेशन कम होगा? तो वो चीज हमें होती हुई अभी तक नहीं दिखी है।
नेक्स्ट कॉल इज अतानु साहा फ्रॉम कोलकाता। अतानु, वार्म वेलकम टू यू ऑन मार्केट मंत्रा। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन टू एक्सपर्ट।
गुड इवनिंग।
Afraid you lost Atanu there. Let's move on to our next story. Ministry of Mines today organized a summit to foster collaboration, sharing knowledge and driving innovation in the field of critical mineral beneficiation and processing in New Delhi. Addressing the inaugural session of the two-day summit, the Secretary of Mines, Ministry of Mines, V.L. Kantha Rao, pointed out that India's rapid economic growth and ambition for clear energy is a need of the hour. He emphasized the importance of exploration of critical minerals in the country. Mr. Rao also mentioned that the government initiated the auction of 20 blocks of critical and strategic minerals in November 2023, followed by another tranche of 18 blocks in February 2024. He added that much more auctions are expected in the future. Now we're joined by N.R. Prasad from Bengaluru. Prasad ji, please ask your question. We're running out of time.
Good evening. This is N.R. Prasad from Bangalore. Mr. Ranjan, one question. Today, market rallied very well, but IT sector and FMCG did not do well. On the contrary, Bank Nifty rallied more than 1,200 points. Any specific reason for the same? Thank you. This is my question.
जी मिस्टर प्रसाद, आईटी सेक्टर के बारे में दो लोग इससे पहले भी पूछ चुके हैं और उनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. जस्ट टू बी गिव यू अ ब्रीफ आंसर, जो अभी उनकी एक अनसर्टेनिटीज है उनके आगे के बिजनेस को लेकर के, उसका एक इम्पैक्ट हमें दिख रहा है आईटी सेक्टर में. अभी बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, उसका एक इम्पैक्ट हमें बैंकिंग सेक्टर को लेकर के एक रिन्यूड बॉयंसी के रूप में दिख रहा है. और एफएमसीजी को लेकर के भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़े कंसर्न हैं इसकी, इस सेक्टर की. जो बड़ी कंपनियां, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन कुछ बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स उतने अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं, उतने मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं रहे हैं, इसलिए अभी वहां भी मार्केट थोड़ा सा वेट एंड वॉच के रूप में चल रहा है.
और इस बीच में कोलकाता से अतानु साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं. अतानु जी, प्रश्न पूछिए.
हाँ, थैंक्स टू आवर मार्केट मेंटर दैट इट इज अवेलेबल डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी ऐप. माय फर्स्ट क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज सर, व्हाट आर अंडर अ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड स्टार्टअप एंड देन एंटरप्रेनर एंड हाउ दे आर बूस्टिंग आवर इंडियन इकोनॉमी. थैंक यू.
मिस्टर सहा, आई होप द क्वेश्चन इज बीइंग मेड क्लियर.
जो स्वयं सहायता समूह उनके बारे में पूछ रहे थे, और जो एंटरप्रेन्योर छोटे छोटे हैं उनके बारे में पूछ रहे कि अपनी भारतीय इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं.
जी, बेसिकली इनका सवाल जो मुझे लगता है वो स्टार्टअप सेक्टर से है.
जी,
मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है. इसके लिए अगर आप स्टार्टअप सेक्टर में कहीं पे आप कुछ देखना चाहते हैं तो अपने आसपास इंक्यूबेशन सेंटर्स की तलाश कीजिए. आपको अगर आप वेब पे इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इंक्यूबेशन सेंटर्स की जानकारी मिल जाएगी, और आप अपने किसी नजदीक के इंक्यूबेशन सेंटर से बात कीजिए, संपर्क कीजिए, वो आपकी मदद कर पाएंगे.
नेक्स्ट कॉल इज चंद्र माउली फ्रॉम मिर्जापुर. प्लीज आस्क अ क्वेश्चन, आर वी रनिंग आउट ऑफ टाइम.
ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं कुछ मनी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ टेक सेक्टर में, तो क्या इस समय मार्केट सही है इन्वेस्ट करने के लिए? एक दो साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, क्या कैसा?
किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप?
डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस स्टॉक में.
डिफेंस देखिए, डिफेंस सेक्टर को लेकर के मार्केट में एक्साइटमेंट बहुत है, और लोगों को ये लग रहा है कि आगे जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है डिफेंस सेक्टर में, पर्टिकुलरली हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहते हैं, और उसके चलते जो भारत की डिफेंस कंपनियां हैं उन्हें काफी बढ़ चढ़ कर आगे आने वाले समय में ऑर्डर्स मिलेंगे. लेकिन ये बात जितनी सच है उतनी ही सच ये भी है कि उनके प्राइसेज रिसेंट मंथ्स और एक डेढ़ साल के अंदर काफी ज्यादा चढ़ गए हैं. तो आप जो भी निवेश करें वो बहुत सोच समझ करके करें, और उसमें सावधानी बरतना जरूरी रहेगा आपके लिए.
Let's have a look at the crude oil market now. Brent crude oil futures was lower by 0.45% at $89.10 per barrel, whereas WTI was down by 0.12% at $83.75 when reports last came in.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार के लिए सोना बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. इस कीमती धातु का मूल्य 64 रूपये यानी 0.09% की तेजी के साथ 71,564 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ. जुलाई अनुबंध के लिए चांदी समाचार तैयार किए जाने तक 114 रूपये यानी 0.14% ऊपर आकर 82,610 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना दिन के कारोबार के दौरान 0.29% के उछाल के साथ $2,354.10 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. वहीं अंतर दिवसीय कारोबार में चांदी 0.58% चढ़कर $27.70 प्रति औंस के स्तर पर चल रही थी. राजीव जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
जी, आपका भी बहुत धन्यवाद अर्जुन और आप निखिल दोनों का.
जी.
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark indices end 1% higher. Sensex settles up 940 points. Nifty above 22,600 level. Gold shines today over surge demand and futures trade. Silver rate also rises to cross 82,600 rupees. And oil prices steady amid Hamas ceasefire talks. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.